लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेतुस महागिरजाघर के प्रांगण में आगमन काल के पहले रविवार को पोप फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने पाठ पर चिंतन करते हुए विश्वासों को स्वर्ग की ओर नजर उठाने और अपना हृदय प्रभु की ओर खोलने हेतु प्रेरित किया। जो हमारे दिल के बोझ अपने ऊपर लेते और यात्रा में हमारी मदद करते हैं, संत पापा ने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
cari fratelli e sorelle, buona domenica.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
Il Vangelo della liturgia di oggi,
आज आगमन काल के प्रथम रविवार की धम्म विधि का सुसमाचार पाठ हमें ब्रह्मांडीय उथल पुथल एवं मनुष्यों में चिंता एवं भय के बारे बतलाता है। इसी पृष्ठभूमि में येसु अपने शिष्यों को आशा के शब्दों में संबोधित करते हैं, उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु की चिंता है कि उनके दिल भारी ना हो जाएं और वे सतर्कता के साथ मानव पुत्र के आगमन का इंतजार कर सकें। संत पापा ने कहा, येसु का निमंत्रण यही है, सिर ऊपर उठाओ और अपना हृदय हल्का एवं जागृत रखो। वास्तव में येसु के समय में कुछ लोग अपने चारों ओर घटित होने वाली विनाशकारी घटनाओं, उत्पीड़न, संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए पीड़ा से ग्रस्त थे और सोच रहे थे कि दुनिया का अंत हो रहा है, लेकिन येसु उन्हें उन चिंताओं एवं झूठी धारणाओं से मुक्त करना चाहते थे, यह बतलाते हुए कि हृदय में कैसे जागरूक रहना है। घटनाओं को ईश्वर की योजना के अनुसार समझने का प्रयास करना है, जो इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं के भीतर भी उद्धार का कार्य करते हैं। इसलिए येसु सुझाव देते हुए कहते हैं, उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ। उपस्थित विश्वासों को संबोधित कर संत पापा ने कहा,
Fratelli e sorelle, anche per noi è importante la raccomandazione di Gesù.
येसु की सलाह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा मन कुंठित ना हो जाए। हम सभी अपने जीवन में अक्सर पूछते हैं, हम एक हल्का हृदय, एक सतर्क हृदय और एक स्वतंत्र हृदय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक ऐसा दिल जो खुद को दुख से कुचलने नहीं देता, क्योंकि दुख बुरा है। ऐसा हो सकता है कि हमारे अपने जीवन के बारे में या आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चिंताएं, भय और व्याकुलता हम पर पत्थरों की तरह भारी पड़े और हमें हतोत्साहित कर दे। यदि चिंताएं दिल को बोझिल कर देती हैं और हमें अपने आप में बंद होने के लिए मजबूर करती हैं, तो इसके विपरीत येसु हमें अपना सिर उठाने और उनके प्यार पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो हमें बचाना चाहते और हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे करीब आते हैं। हमें आशा को फिर से खोजने के लिए जगह बनाने की सलाह देते हैं। अतः संत पापा ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा हृदय डर से, चिंताओं से, भविष्य के सोच से भारी है? क्या मैं जानता हूँ कि दैनिक घटनाओं और इतिहास की घटनाओं को ईश्वर की आंखों से प्रार्थना में व्यापक क्षितिज के साथ कैसे देखना है? या क्या मैं खुद को हतोत्साहित होने देता हूँ? आगमन काल का यह समय प्रभु की ओर अपनी नजरें उठाने का एक अनमोल अवसर हो, जो हमारे दिलों को हल्का करते और यात्रा में हमारा साथ देते हैं। तब संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम कुंवारी मरियम का आह्वान करें, जो परीक्षा की घड़ी में भी ईश्वर की योजना का स्वागत करने के लिए तैयार थीं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासों का अभिवादन किया तथा विभिन्न घटनाओं की याद की। संत पापा ने अर्जेंटीना एवं चिली के बीच समझौते के 40वें वर्षगांठ की याद की, जिसको कुछ ही दिनों पहले अर्जेंटीना और चिली के बीच शांति और मैत्री संधि के 40वें वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। वैटिकन की मध्यस्थता से इस संधि ने उस क्षेत्रीय विवाद को समाप्त कर दिया जिसने अर्जेंटीना और चिली को युद्ध के कागार पर ला खड़ा किया था। संत पापा ने कहा, यह दर्शाता है कि जब कोई हथियारों के इस्तेमाल को त्याग देता है और बातचीत में शामिल होता है तो वह अच्छी तरह प्रगति करता है। तत्पश्चात संत पापा ने लेबनान एवं इसराइल के बीच युद्ध विराम के लिए अपनी खुशी जाहिर की एवं कहा, मैं लेबनान में हाल के दिनों में हुए युद्ध विराम के लिए खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि सभी पक्षों द्वारा इसका सम्मान किया जाएगा, जिससे संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों की जनता, लेबनानी और इसराइली दोनों ही, लेबनानी सेना एवं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की बहुमूल्य मदद से शीघ्र एवं सुरक्षित घर लौट सके। उन्होंने लेबनान के नेताओं से अपील की कि वे देश के राष्ट्रपति का तत्काल चुनाव करें और संस्थाओं को उनके सामान्य कामकाज पर बहाल करें, आवश्यक सुधारों के साथ आगे बढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि देश विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण अस्तित्व के उदाहरण के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखे। पोप ने आगे कहा, मेरी आशा है कि शांति की जो किरण उभरी है वे सभी अन्य मोर्चों पर, विशेष रूप से गजा में, युद्ध विराम की ओर ले जाएगी। मैं उन इसराइलियों की मुक्ति के बारे में बहुत चिंतित हूँ जो अभी भी बंधक हैं और थके हुए फिलिस्तीनियों तक मानवीय सहायता पहुँचे। सीरिया में भड़की हिंसा के लिए दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आइए हम सीरिया के लिए प्रार्थना करें, जहाँ दुर्भाग्य से युद्ध फिर से भड़क गया है जिससे कई लोग पीड़ित हैं। मैं सीरिया की कलीसिया के बहुत करीब हूँ, आइए हम प्रार्थना करें। उसके बाद संत पापा ने पीड़ित यूक्रेन के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की, जो करीब 3 वर्षों से मौत, घायल होने, हिंसा और विनाश की भयंकर घटनाओं को झेल रहे हैं। संत पापा ने कहा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर लोग सबसे पहले इसके शिकार बनते हैं। युद्ध एक दहशत है। युद्ध ईश्वर और मानवता का अपमान करता है। युद्ध किसी को नहीं छोड़ता। युद्ध हमेशा हार है, पूरी मानवता की हार। हमें लगता है कि सर्दी आ गई है और लाखों विस्थापित लोगों की स्थिति बदतर होने का खतरा है। ये महीने उनके लिए अधिक कठिन होने वाले हैं। युद्ध और शीत का संयोजन दुखद है। अतः पोप ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा, मैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और हर अच्छे इरादे रखने वाले पुरुष और महिला से अपील करता हूं कि वे इस युद्ध को रोकने और समाज, भाईचारा एवं मेल मिलाप स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। हर स्तर पर पुनः प्रयास किया जाए। और जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, शांति के राजा के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन लोगों को ठोस आशा प्रदान की जाए। शांति की खोज कुछ लोगों की नहीं बल्कि सभी लोगों की जिम्मेदारी है। अगर युद्ध की भयावहता के प्रति आदत और उदासीनता हावी हो जाए तो पूरा मानव परिवार ही हार जाएगा। युद्ध के कारण पूरा मानव परिवार पराजित हो चुका है। अतः संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस कठोर परीक्षा से गुजर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करने से कभी न थकें और ईश्वर से शांति का वरदान मांगें। तत्पश्चात संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु।
मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु।
ओ न जाने कितने करेगा, पर तू उपकार प्रभु। मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु। मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने आगमन के पहले रविवार यानी 1 दिसंबर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर युद्ध से पीड़ित देशों के लिए युद्ध विराम और शांति हेतु प्रार्थना करने की अपनी अपील को नवीनीकृत किया। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के साथ मिलकर रविवार यह देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पूर्व संत लूकस के सुसमाचार से लिए गए पाठ पर संदेश दिया और देवदूत प्रार्थना के पश्चात युद्ध से पीड़ित देशों के लिए युद्ध विराम और शांति हेतु प्रार्थना करने की अपनी अपील को नवीनीकृत किया। इसी के मद्देनजर संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 संदेश लिखा। पहला संदेश, आज के सुसमाचार में येसु हमें पृथ्वी की चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्वर्ग की ओर देखने हेतु आमंत्रित करते हैं। दूसरा संदेश, मुझे उम्मीद है कि लेबनान में शांति की जो किरण खुली है वह सभी अन्य मोर्चों पर युद्ध विराम की ओर ले जाएगी, खासकर गाजा में। मैं इसराइली बंधकों की रिहाई और थके हुए फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के बारे में गहराई से चिंतित हूं। तीसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, आइए हम सीरिया के लिए एक साथ प्रार्थना करें, जहां दुर्भाग्य से युद्ध फिर से शुरू हो गया है जिससे कई लोग पीड़ित हुए हैं। मैं सीरियाई कलीसिया के बहुत करीब हूं। चौथे संदेश में संत पापा ने लिखा, शांति की खोज हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर युद्ध की भयावहता के प्रति स्तब्धता और उदासीनता हावी हो जाती है तो पूरा मानव परिवार हार जाता है। आइए हम यूक्रेन के लिए प्रार्थना करने से न थकें, जो इतनी बुरी तरह पीड़ित है, और शांति के उपहार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। उधर वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र द्वार खुलने के बस कुछ ही दिन रह गए हैं, जो पवित्र वर्ष 2025 की शुरुआत को चिन्हित करता है। जयंती जीवन के दैनिक यात्रा और सुसमाचार की घोषणा में आशा को फिर से जगाने के लिए पूर्ण दंड मोचन, मन परिवर्तन और अनुग्रह के लिए एक विशेष क्षण प्रदान करती है। 24 दिसंबर को रोम के समय अनुसार शाम 7 बजे पवित्र द्वार के खुलने और हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक लाइव के माध्यम से वाटिकन समाचार और वाटिकन रेडियो के साथ पवित्र वर्ष 2025 के सभी कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। उधर बेंगलोर महाधर्म प्रांत ने मथिकेरे नामक स्थान के पास प्रवासियों के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है, जो सेवा और समावेशिता के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रविवार 1 दिसंबर को प्रवासियों के केंद्र की आधारशिला भारत और नेपाल के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्ड डोजी रेल्ली द्वारा महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो, सहायक धर्माध्यक्ष अरोकिया राज सतीश कुमार और क्रिस्त राजा पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं पल्ली वासियों की उपस्थिति में रखी गई। अपने संबोधन में प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष जिरेली ने कहा कि यह परियोजना वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने प्रवासियों के केंद्र को प्रवासियों की गरिमा को पहचानने और बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा, प्रवासी ईश्वर की तरह है और उनका सम्मान के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। बेंगलोर महाधर्म प्रांत वास्तव में प्रवासियों की जरूरतों को संबोधित करके संत पापा फ्रांसिस के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए मेहमानों को ईश्वर अतिथि देवो भवः के रूप में मानने की भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार को जी रहा है। महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने उनकी उपस्थिति और प्रेरक शब्दों के लिए प्रेरितिक राजदूत के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसने इस पहल को और भी यादगार बना दिया। उन्होंने प्रवासियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और उनकी जरूरतों का समर्थन करने में सभी के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। महाधर्माध्यक्ष मचाडो ने वाटिकन के समग्र मानव विकास विभाग को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि कार्डिनल तोमासी और स्केलेब्रियन मिशनरी, जो प्रवासियों के साथ अपने समर्पित काम के लिए जाने जाते हैं, इस घर को प्रवासी स्वागत और अल्प प्रवास केंद्र के रूप में चलाने की हमारे उद्यम का समर्थन कर रहे हैं। उधर वाटिकन के समग्र मानव विकास विभाग की सचिव सिस्टर अलेसांद्रा स्मेरिली ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कैथोलिक कलीसिया को सिनोडालिटी को जीवन के एक तरीके के रूप में अपनाना चाहिए। नई दिल्ली में महाधर्माध्यक्ष भवन में बोलते हुए सिस्टर अलेसांद्रा ने कहा कि बदलती दुनिया में कलीसिया के मिशन के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भारत में कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CCBI के महासचिव ने बताया कि डॉक्टर स्मारेली ने संत पापा फ्रांसिस के एक सिनोडल कलीसिया के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो कि एकता, भागीदारी और मिशन पर केंद्रित है। 30 नवंबर को कलीसिया होने का एक नया तरीका धर्म सभा शीर्षक के तहत आयोजित परामर्श सभा में भारत के उत्तरी क्षेत्र के धर्माध्यक्ष, धर्मशास्त्री और आम प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए कि धर्म सभा कलीसिया के काम को कैसे निर्देशित कर सकती है। CCBI के महासचिव, दिल्ली के महाधर्माध्यक्ष अनिल काउटो ने कलीसिया के भीतर एकता और साझा जिम्मेदारी का आह्वान करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। परामर्श सभा में कलीसिया के मिशन को सिनोडालिटी के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें साझा जिम्मेदारी और जुड़ाव पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने इस बात पर विचार किया कि यह दृष्टिकोण समाज में कलीसिया की भूमिका को कैसे मजबूत कर सकता है। उधर थाईलैंड में कई बौद्ध और कैथोलिक नेता दिवंगत कार्डिनल मिगुएल एंजेल आयुसु के जीवन और विरासत का जश्न मनाने के लिए बैंकॉक के एक प्रमुख बौद्ध मंदिर में एकत्र हुए। कार्डिनल मिगुएल परम धर्म पीठे अंतर धार्मिक संवाद विभाग के प्रीफेक्ट थे। उन्हें 1 दिसंबर को बैंकॉक के सबसे प्रमुख बौद्ध मंदिरों में से एक वाट फ्रा चेतुफोन में उनकी मृत्यु पर शोक समारोह में सम्मानित किया गया। इस अभूतपूर्व घटना ने थाईलैंड में कैथोलिक और बौद्ध समुदायों के बीच गहरे संबंध को उजागर किया, एक ऐसा संबंध जो कार्डिनल के अंतरधार्मिक समझ को बढ़ावा देने के लिए अथक समर्पण से मजबूत हुआ। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।